शिक्षार्थियों, श्रोताओं, आप सभी को मैं नमस्कार करती हूँ और आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा शीर्षक रहेगा, जिस पाठ पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, वो एक कहानी है। और कहानी हम सबको ही सुननी भी अच्छी लगती है, पढ़नी भी अच्छी लगती है, किसी को सुनानी भी अच्छी लगती है। आज जो हमारी ये कहानी है, सुखी राजकुमार, जैसा हम सभी कहानियाँ सुनना, सुनाना, पढ़ना बहुत पसंद करते हैं। जब हम छोटे होते थे, तो उस समय जब हम छोटे थे तो हमें परियों की कहानियाँ, राजाओं की कहानियाँ, इस तरह की कहानियाँ हम पसंद करते थे, जिसमें सब कुछ अच्छा अच्छा होता था और थोड़ी देर के लिए कुछ ऐसा संघर्ष होता था उस परी के जीवन में, किसी व्यक्ति के जीवन में, और फिर सब कुछ अच्छा हो जाता था। एक बहुत ही अच्छे अंत पर वो कहानी समाप्त होती थी। ये सुखांत कहानियाँ होती थी और इनमें सोचने समझने के लिए बहुत अधिक गुंजाइश नहीं होती थी। अमूमन इनका जो उद्देश्य होता था वो मनोरंजन करना अधिक होता था। ये बिल्कुल सही बात है कि कुछ मूल्य भी हम इन कहानियों से सीखते थे। हम सीखते थे कि हमें मानव रूप में एक दूसरे की परवाह करनी चाहिए। एक अगर कोई व्यक्ति कठिनाई में है, संकट में है, तो उसकी सहायता करनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि आरंभ से ही जब हम छोटे होते हैं और उससे बड़े होते आते हैं, तब से ही हमें परिवार में भी, अपने विद्यालय में भी, अपने आसपास के समाज में भी बार बार ये संदेश दिया जाता है, बार बार ये सिखाया जाता है कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति दुखी है तो हमें भी उसके दुख में शामिल होना चाहिए। यही तो मानवता की विशेषता होती है ना। अगर साथ वाला व्यक्ति दुखी है और हम मज़े में अपना खा पी रहे हैं, खुश हो रहे हैं अपना, क्योंकि हमें लगता है हम तो दुखी नहीं है ना, इस इनके दुख से हमारे सुख का कोई संबंध नहीं है, हमारा सुख अलग है, उनका दुख अलग है। लेकिन हम ऐसा अगर सोचते हैं तो हम गलत सोचते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने आसपास के लोगों के सुख और दुख में सहभागी बने, तभी तो हम समाज का एक अनिवार्य अंग बन पाएंगे, एक बहुत ही कह सकते हैं कि सशक्त भूमिका हम अपनी निभा पाएंगे। तो ये कविता जब हम पढ़ेंगे शिक्षार्थियों, तो आप भी इस बात को समझेंगे कि किस तरह से एक मूर्ति ने सजीव व्यक्तियों के दुख को, उनकी पीड़ा को समझा और किस तरह उनकी समस्याओं का अंत करने के लिए, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए उपाय निकाला, और उसमें चाहे उसने अपने आप को ही स्वाहा कर दिया। तो ये बहुत ही खूबसूरत कहानी है और इस कहानी का अनुवाद यहाँ पर हमारे लिए किया गया है। ये कहानी जो है सुखी राजकुमार की कहानी है और इस कहानी को जब हम पढ़ेंगे और इस पर जब हम चर्चा करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको भी ये अनुभव होगा कि ये कहानी हमें भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देती है। आज जब हम सब पैसे की चकाचौंध में बहुत अधिक लिप्त हो गए हैं, बहुत अधिक व्यस्त हो गए हैं, हमें लग रहा है कि हमारे लिए बहुत सारे भौतिक संसाधन हों, हमारे पास अच्छे वस्त्र हों, अच्छे गहने हों, अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, सब कुछ अच्छा अच्छा हो, लेकिन हम सिर्फ अपने लिए इन सब सुविधाओं की कामना करते हैं। हम नहीं समझना चाहते हैं कि हमारे साथ रहने वाले अन्य लोगों की क्या स्थिति है, क्या हम किसी भी रूप में उस सुविधा वंचित वर्ग की कोई सहायता कर सकते हैं। हम ये विचार करने के लिए थोड़ा सा भी समय नहीं निकालते हैं, हम काफ़ी स्वार्थी हो गए हैं। तो आज का जो ये स्वार्थ भरा माहौल है, जिसमें मैं वाली जो भावना आ गई है, उसमें हम वाली कोई भावना नहीं रहती है, उसमें ये कहानी क्या संदेश लेकर आ रही है? बहुत ही खूबसूरत संदेश है, आप खुद ही समझेंगे। हम इस कहानी पर बात करते हैं, इस कहानी को हम पढ़ते हैं और पढ़ने के बीच में ही हम इस पर चर्चा भी करते चलेंगे, तो आपको भी अच्छा भी लगेगा मैं उम्मीद करती हूँ, और आपको ये कहानी बहुत ही बेहतर ढंग से समझ में भी आएगी। ये कहानी कुछ इस तरह से है। नगर में उत्तर की ओर एक ऊंचे से स्तंभ पर सुखी राजकुमार की प्रतिमा स्थापित थी। पहले वाक्य में ही ये हमें पता चल गया है कि ये एक नगर है और नगर में एक बहुत ही ऊंचा खंभा है, बहुत ही ऊंचा स्तंभ बना हुआ है और उस पर एक प्रतिमा स्थापित है, और उस प्रतिमा को कहा जा रहा है कि ये सुखी राजकुमार की प्रतिमा है। यानी सुखी विशेषण पहले से ही उसके नाम के आगे, उसके पद के आगे लगा हुआ है। इस मूर्ति पर हल्का स्वर्ण पत्र मढ़ा था, सोने से मढ़ा हुआ था। आँखों के स्थान पर जहाँ उस मूर्ति की आँखें थी, वहाँ सिर्फ आँखें नहीं बनी हुई थी, वहाँ दो चमकदार नीलम थे। नीलम जो बहुत ही बहुमूल्य पत्थर होता है, वो उस पत्थर के की दो आँखें बनी हुई थी, और तलवार की मूठ पर, मूठ जहाँ से पकड़ते हैं तलवार को, तलवार की मूठ में एक बड़ा सा लाल, ये भी एक बहुत ही लाल रंग का बहुत ही कीमती पत्थर होता है, रत्न होता है, ये बड़ा सा लाल जड़ा हुआ था। तो पहले अनुच्छेद में ही हमें पता चल गया है कि एक प्रतिमा है और वो कितनी कीमती प्रतिमा है। लोग उस प्रतिमा के सौंदर्य की बड़ी प्रशंसा करते थे, क्योंकि बनी हुई बहुत सुंदर है, फिर उस पर सोने का पत्र जड़ा हुआ है, पत्र मढ़ा हुआ है, और इतने बहुमूल्य पत्थर उस पर लगे हुए हैं, आँखों की जगह पर नीलम लगे हुए हैं और तलवार की मूठ में एक बड़ा सा लाल जड़ा हुआ है, तो खूबसूरत तो लगेगा ही। तो लोग बहुत प्रशंसा करते थे उसके कि ये तो बहुत सुंदर प्रतिमा है। दिन भर उड़ने के बाद एक गौरैया रात को नगर के समीप पहुंची। तो अब एक और पात्र हमारी इस कहानी में प्रवेश कर रहा है, एक तो सुखी राजकुमार हो गया, और जो दूसरा पात्र प्रवेश कर रहा है वो है एक गौरैया, एक चिड़िया, छोटी सी चिड़िया। अब वो सोच रही है, क्या सोच रही है? मैं ठहरूं कहाँ, उसने सोचा, मैं समझ रही थी शहर मेरा स्वागत करेगा। अब गौरैया है, छोटी सी चिड़िया है, उसे लग रहा है कि वो सबसे खूबसूरत है, सबसे महत्वपूर्ण है, और यहाँ उसे एक बहुत ही अच्छा स्वागत मिलना चाहिए था, उसे सब लोग उसका स्वागत करते, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है, मतलब गुमनाम है ये गौरैया। तो उसे दुख हो रहा है, उस ज़्यादा ही उम्मीद वो अपनी ज़िंदगी से कर रही है। इतने में उसने स्तंभासीन मूर्ति देखी, स्तंभ पर आसीन, स्तंभासीन स्तंभ पर आसीन मूर्ति, मूर्ति किसकी थी? सुखी राजकुमार की। तो उसने स्तंभासीन मूर्ति देखी, वो बहुत खुश हो गई। आहा, मैं यहीं ठहरूंगी, यह बहुत अच्छा स्थान है, यहाँ काफी साफ हवा आ रही है। तो उसे लगा कि यह बिल्कुल सही जगह है, यहाँ पर ही मैं आराम करती हूँ, और वह मूर्ति के पैरों के पास उतर पड़ी। वो वहाँ पहले उड़ रही थी, फिर उसने देखा ऊपर से, और फिर वो वहाँ पर आकर बैठ गई। उसने चारों ओर देखकर कहा, मेरा शयनागार सोने का है, यानी शयनागार हम अंग्रेजी में कहते हैं जिसे बेडरूम, जहाँ हम सोते हैं। तो ये कहते हैं कि जो मेरा बेडरूम है, मेरा शयनागार है, वो सोने का है, क्योंकि वो मूर्ति जो थी वो सोने की जड़ी हुई थी। तो और वह पंखों में मुंह छिपाकर सोने जा रही थी। अब उसने सोने की, तो बहुत खुश हो गई कि वाह, कितनी अच्छी जगह में मुझे सोने के लिए मिली है, मैं तो यहीं रुकूंगी, यहीं पे आराम करूंगी। तो उसने सोने की तैयारी कर ली, अपने पंखों में अपना मुंह छुपा रही थी, लेकिन एकदम क्या हुआ, एक पानी की बड़ी सी बूंद टप से उस पर गिर पड़ी। अब उसे अचरज हुआ, इस समय तो ऐसा लग भी नहीं रहा है कि बारिश होने वाली है, ये पानी कहाँ से आया? वो बोली, ताजुब है, आकाश में एक भी बादल नहीं है, यानी बादल होगा तभी तो वर्षा होगी ना, तारे भी साफ चमक रहे हैं, फिर भी पानी बरस रहा है, यानी विरोधाभास है। हम भी बादल देखकर ये सोच लेते हैं ना कि आज बादल हो रहे हैं, बारिश जरूर होने वाली है, लेकिन यहाँ पर तो इस तरह का कोई भी बादल नजर नहीं आ रहा है। और जब बादल नहीं होते और आप रात को आकाश को देखिए तो तारे साफ चमकते हुए आपको दिखाई देंगे। अब तारे भी नहीं हैं, तारे भी चमक रहे हैं, बादल भी नहीं है, फिर भी पानी बरस रहा है, मतलब बिन बादल बरसात वाली बात हो गई, ये कहाँ से आ रहा है? इतने में क्या हुआ, दूसरी बूंद गिरी। इस प्रतिमा से फायदा क्या अगर ये वर्षा भी नहीं रोक सकती? अब यहाँ पर जो गौरैया है वो जब इस प्रतिमा के नीचे रुकी है आराम करने के लिए, तो उसे ये उम्मीद है कि अगर कहीं भी बहुत तेज़ हवा हुई, वर्षा हुई, मौसम का कोई भी प्रभाव हुआ तो ये प्रतिमा जो है मेरी रक्षा कर लेगी। लेकिन इससे तो एक बूंद भी नहीं रुक पा रही है, तो यहाँ मैं रुकूं क्यों? क्यों रुकी मैं? उसे जैसे पछतावा हो रहा है। चलो कोई दूसरा आश्रय स्थान ढूंढे। उसने पंख खोले और जैसे ही उसने पंख खोले तो तीसरी बूंद गिर पड़ी। उसने ऊपर देखा, भाई ये बूंद कहाँ से आ रही है? एक उत्सुकता उसके मन में जागी कि इस मौसम बिल्कुल साफ है और फिर भी पानी गिर रहा है, ये पानी कहाँ से गिर रहा है? अब उसने क्या देखा, बहुत उसे आश्चर्य हुआ होगा ये देखकर, क्योंकि प्रतिमा के नीचे वो बैठी है, प्रतिमा जो पत्थर की है, और उस प्रतिमा पर सोना, सोने का पत्र मढ़ा हुआ है। इस तरह की प्रतिमा में से जल की बूंदें गिर रही हैं, कैसे गिर सकती हैं? उसने जब देखा तो क्या देखती है कि राजकुमार की आंखें डबडबा रही थी और उसके सुनहले गाल पर आंसू ढुलक रहे थे। उसका चेहरा इतना भोला था कि गौरैया को दया आ गई। अब यहाँ पर प्रतिमा जो है, जिससे हम उम्मीद नहीं करते, या अगर आप नियम के अनुसार देखें तो निर्जीव है। अब इस तरह की निर्जीव प्रतिमा जो है वो रो रही है, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं, और रोते हुए जैसे कोई भी व्यक्ति बहुत ही निस्सहाय और भोला सा प्रतीत होता है, उसी तरह से ये राजकुमार की प्रतिमा भी प्रतीत हो रही थी। तो गौरैया जो थी उसको दया आ गई कि कितनी बहुत बुरी बात हो गई है ये। तो गौरैया पूछती है, तुम कौन हो? अब प्रतिमा जवाब दे रही है, मैं सुखी राजकुमार हूँ। अब उसने क्या कहा है, उसने अपना नाम नहीं बताया, उसने कहा है सुखी राजकुमार। इस विशेषण का मानो नाम की तरह प्रयोग किया गया है, मैं सुखी राजकुमार हूँ। तो इसी प्रतिमा के इसी उत्तर के संबंध में गौरैया फिर से प्रश्न कर रही है कि अगर सुखी राजकुमार हो तो फिर रो क्यों रहे हो? तुम तो सुखी हो, सुखी व्यक्ति तो हंसता है, सुखी व्यक्ति तो खुश रहता है, लेकिन तुम तो रो रहे हो, फिर तुम सुखी कैसे हो? अगर तुम खुद को सुखी राजकुमार कह रहे हो तो रो मत ना, रो क्यों रहे हो? पंख फड़फड़ाकर गौरैया ने कहा, तुमने तो मुझे बिल्कुल भिगो दिया है, यानी तुम इतना रो रहे हो और तुम कह रहे हो कि तुम सुखी राजकुमार हो। अब सुखी राजकुमार की प्रतिमा जो है वो कह रही है, जब मैं जीवित था, यानी जब मुझ में जीवन था, जब मैं जीवित था और मेरे वक्ष में, मेरे हृदय में, मेरी छाती में मनुष्य का हृदय धड़कता था, यानी जब मैं मानव था, तब मेरा आंसुओं से परिचय नहीं हुआ था। मैं जानता ही नहीं था कि आंसू क्या होते हैं, यानी मैं कभी दुखी नहीं हुआ था। मेरे पास ऐसा कोई कारण नहीं था, मेरे जीवन में ऐसा कोई संघर्ष नहीं था जिसकी वजह से मैं कभी दुखी होता। मुझे ऐसी कोई स्थिति ही नहीं मिली, चारों तरफ मुझे तो सुख ही महसूस हो रहा था। आगे वो बताता है कि मैं आनंद महल में रहता था, आनंद से भरा हुआ था मेरा महल, जहाँ दुख को प्रवेश करने की इजाज़त नहीं थी, यानी वहां पर दुख तो था ही नहीं। दिन में मैं अपने उद्यान में विलास करता था और रात को नृत्य में लगा रहता था, यानी मैं पूरा आनंदमय जीवन व्यतीत कर रहा था। मेरा कोई भी कार्य नहीं था, मेरी कोई भी जिम्मेदारी नहीं थी, मुझसे कुछ भी अपेक्षित नहीं था, यानी बिना कर्तव्यों के मैं बस यूं ही सिर्फ मजे में, आनंद में जीवन जी रहा था। मेरे उद्यान के चारों ओर एक प्राचीर थी, और ये जो प्राचीर थी उससे क्या हुआ कि राजकुमार ने कभी बाहर के जीवन को देखा ही नहीं, उसने जाना ही नहीं कि इस महल के बाहर जो लोग रह रहे हैं, जो आम जन हैं, जो आम नागरिक हैं, वो किस तरह का जीवन, किस तरह का संघर्ष, किस तरह के सुख दुख में वो लोग जी रहे हैं। तो वो कहते हैं मेरे उद्यान के चारों ओर एक प्राचीर थी, किंतु मेरे चारों ओर इतना सौंदर्य था कि मैंने कभी बाहर देखने का प्रयत्न ही नहीं किया। यानी मेरे आसपास इतनी सुंदरता थी, इतना सुख था, इतना विलास था कि मैं उसमें ही डूबा रह गया। मैंने कभी बाहर झांक कर नहीं देखा, कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि मेरे महल से बाहर किस तरह का जीवन लोग जी रहे हैं। मैं जीता रहा और मर गया, यानी मेरे जीवन का कोई भी उद्देश्य नहीं था। मैं बस यूं ही आनंद में रहता रहा और फिर मैं मर गया। कोई खास बात नहीं हुई, एक सामान्य सी घटना थी कि मैं जीता रहा और मैं मर गया। आज जब मैं मर गया हूं तो उन्होंने मुझे इतने ऊंचे पर स्थापित कर दिया है कि मैं संसार की सारी कुरूपता और दुख दर्द देख सकता हूं। मेरे ही नगर में इतना दुख है कि यद्यपि मेरा हृदय जस्ते का है मगर फिर भी फटा जा रहा है। वो कह रहा है कि जब मैं जीवित था तब मैं बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना ढंग से अपना जीवन जी रहा था, खुशी में, सुंदरता में, सौंदर्य में, विलास में, आनंद में मैं जी रहा था। मैंने कभी प्रयास ही नहीं किया अपनी प्रजा को के बारे में, उनके सुख दुख के बारे में जानने के लिए। लेकिन जब मैं मर गया हूँ और मेरी एक प्रतिमा स्थापित कर दी है, तो वो प्रतिमा इतनी ऊंचाई पर रखी गई है कि मैं इतनी ऊंचाई से अपने पूरे नगर को देख सकता हूँ और मैं जान सकता हूँ, मुझे पता लगता है कि मेरे ही नगर में कितना अधिक दुख है, कितना अधिक संघर्ष है, जो मेरी प्रजा है, जो मेरे लोग हैं, वो कितने दुखी हैं। और आज मैं किसी भी तरह से किसी की कोई सहायता करने में समर्थ नहीं हूँ, मैं मर गया हूँ, मैं निर्जीव हूँ, मैं मृत हूँ, लेकिन फिर भी इतना दुख देखकर मेरा हृदय जो है वो दुख के मारे फटा जा रहा है। यानी मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। अब गौरैया कुछ और बात सोच रही है। अच्छा, तो राजकुमार ठोस सोने का नहीं है, यानी एक पत्र चढ़ा हुआ है उसका, वो क्योंकि बताता है कि उसका हृदय जस्ते का है, यानी सोने का नहीं है। गौरैया ने सोचा, मगर वह इतनी शिष्ट थी, कितनी शिष्ट थी कि उसने ये बात जोर से नहीं बोली। वो नम्र थी तो उसने ये बात नहीं बोली कि नहीं, अच्छा नहीं लगेगा कि मैं ये बात उसे बोल दूं कि तुम पूरे के पूरे सोने के नहीं हो, ठोस सोने के नहीं, सिर्फ पत्र चढ़ा है। ओ, मुझे तो लग रहा था कि आप तो पूरे सोने के हो। अब राजकुमार अपनी बात जो है वो आगे कह रहा है। दूर, बहुत दूर, एक गंदी सी नाली में, माफ कीजिएगा, गंदी सी गली में टूटा फूटा मकान है। उसकी एक खिड़की खुली है, उसके अंदर एक चौकी पर एक स्त्री बैठी है। उसका चेहरा दुबला और थका हुआ है और उसके हाथ सुई के घावों से क्षत विक्षत हैं। वह रानी की सर्व सुंदरी अंगरक्षिका के नृत्य वसन पर फूल काट रही है। एक कोने में उसका बच्चा बीमार पड़ा है, उसे ज्वर है और वह फल मांग रहा है। गौरैया, नन्ही गौरैया, क्या तुम मेरी तलवार की मूठ में जगमगाता हुआ लाल निकाल कर उसे नहीं दे आओगी? मेरे पैर तो इस स्तंभ में जड़े हैं और मैं चल नहीं सकता। तो यहाँ पर जो सुखी राजकुमार है वो मूर्ति के रूप में है, मूर्ति बहुत ऊंचे स्थान पर आसीन है और इतनी ऊंचाई पर आसीन होने के कारण जो सुखी राजकुमार की मूर्ति है वो देख पा रही है कि बहुत दूर एक जो स्त्री है बहुत दुखी है और वो रानी की जो अंग रक्षिका है उसके कपड़ों पर कढ़ाई वो कर रही है। उसका बच्चा बीमार है लेकिन वो इतनी गरीब है कि वो उसका इलाज नहीं करा पा रही है। उस वो बच्चा फल मांग रहा है, वो उसे फल नहीं दे पा रही है और किसी भी स्थिति में उसकी कोई भी सहायता कहीं से भी आने की उम्मीद नहीं है। ये जो इस स्त्री का दुख है ये सुखी राजकुमार की प्रतिमा को बहुत ही उद्वेलित कर रहा है, बहुत ही परेशान कर रहा है और यहाँ पर वो गौरैया की मदद मांगता है और बहुत ही प्रेम से स्नेह से वो उसको बुलाता है, कहता है गौरैया, नन्ही गौरैया, क्या तुम मेरी तलवार की मूठ में जगमगाता हुआ लाल निकाल कर उसे नहीं दे आओगी? यानी आग्रह कर रहा है, इसका नहीं दे आओगी मतलब दे आओ ना। जब हम इस तरीके से बोलते हैं, आग्रह करते हैं, जैसे हमारी कोई सखी हो, हमारा कोई प्रिय व्यक्ति हो तो उसे हम अनुरोध करते हैं कि ये काम ज़रा कर दोगे ना। तो इस तरह से सुखी राजकुमार की प्रतिमा भी गौरैया को इस स्त्री की सहायता करने के लिए अनुरोध कर रही है। कहते कि मैं खुद इसकी मदद कर देता लेकिन मैं तो यहाँ पर मूर्ति में जड़ा हुआ हूँ, मूर्ति में बंधा हुआ हूँ और मैं चल नहीं सकता, तो तुम मेरी मदद कर दो ना। अब यहाँ गौरैया अपनी बात कह रही है, कह रही है दक्षिण देश में लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह से गौरैया यहाँ कह रही है जैसे वो कहते हैं कि मैं तो समझ रही थी कि ये जो शहर है मेरा स्वागत करेगा, यहाँ तो कोई भी नहीं है। उसी तरह से वो बहुत अधिक आशान्वित है, कह रही है कि दक्षिण लोग में लोग मेरी प्रतीक्षा देश में लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे नील नदी पर उड़ रहे होंगे और कमल के फूलों से वार्तालाप करने के बाद राजाओं के मकबरों में सोते होंगे। राजा रंगीन ताबूत में सो रहा होगा, वह पीले वस्त्र में लिपटा होगा और मसालों से उसका अंग लेपन किया गया होगा। उसकी गर्दन में पुखराज का हार होगा और उसके हाथ सूखी पत्तियों की तरह होंगे। तो इस तरह की जो ये स्थिति, ये जो दृश्य यहाँ पर गौरैया ने बताया है, वो अपनी योजना बता रही है कि मैं तो दक्षिण की तरफ जा रही हूँ, इतना समय नहीं है कि वो जो दूर स्त्री बैठी है जिसका बच्चा बीमार है जो फल मांग रहा है, मैं उसके लिए तुम्हारी तलवार की मूठ में जड़ा हुआ रत्न मैं उसको देने जाऊँ? तो मैं बहुत व्यस्त हूँ, तो मैं थोड़ी देर आराम के लिए रुकी थी। लेकिन राजकुमार जो है वो उसे फिर से उसको कहता है गौरैया गौरैया, सिर्फ आज रात को तुम मेरा काम कर दो, बच्चा प्यासा है, उदास भी है। तो बच्चे की उदासी, उसका बीमार होना, राजकुमार जो मृत है उसे परेशान कर रहा है। यानी जीवित रहकर वो बिल्कुल बेपरवाह था अपने इन लोगों के सुख दुख को लेकर, लेकिन आज जब वो मृत है, जब वो प्रतिमा के रूप में है, वो अपनी प्रजा के सुख दुख को समझ रहा है और उनके दुखों को दूर करने के लिए वो पूरी कोशिश कर रहा है। यानी इस राजकुमार के चरित्र में आप देखेंगे किस तरह से जो उसकी शेड हैं वो बदल रही हैं। वो कहता है गौरैया गौरैया, सिर्फ आज रात को तुम मेरा काम कर दो, यानी फिर आग्रह कर रहा है ना, ये काम तो कर दो फिर उसके बाद चली जाना। गौरैया कहती है मुझे बच्चों से ज़रा भी स्नेह नहीं है, पिछले वसंत में दो बच्चे रोज़ आकर मुझे ढेले मारा करते थे, यद्यपि मुझे चोट नहीं लगी, मैं बहुत तेज़ उठती हूँ, किंतु यह बड़ी ही अपमानजनक बात है। यानी बच्चे अच्छे थोड़ी ना होते, मुझे नहीं बच्चे अच्छे लगते। कहने का तात्पर्य यह था कि उसके जो अपने अनुभव थे बच्चों को लेकर वो अच्छे नहीं थे, कुछ बच्चे उसको पत्थर मारा करते थे, यद्यपि उसको चोट नहीं लगी, जिसका गर्व उसे है क्योंकि वो बहुत तेज़, वो कहती है कि मैं बहुत तेज़ उड़ती हूँ, लेकिन ये बहुत मुझे बहुत बुरा लगा कि बच्चे मुझे पत्थर मार रहे हैं। मगर राजकुमार इतना उदास था कि गौरैया को दया आ गई। यानी गौरैया बार बार ये बात बताने की कोशिश कर रही है कि मैं तुम्हारी सहायता करने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मेरे अपने अनुभव अच्छे नहीं हैं बच्चों को लेकर, और दूसरा मैं व्यस्त हूँ, इस समय मैं आराम के लिए रुकी हूँ, लेकिन मुझे तो दक्षिण देश की तरफ, उधर दक्षिण दिशा की तरफ जाना है, मैं यहाँ पर रुकने वाली नहीं हूँ, तो मुझसे तुम ज़्यादा उम्मीद मत करो। लेकिन अब इतना उदास उसने देखा राजकुमार को, तो गौरैया को फिर दया आ गई। यहाँ बहुत सर्दी पड़ने लगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आज तुम्हारा काम कर दूंगी। लेकिन कहने का तात्पर्य क्या है कि मौसम भी बहुत ख़राब है, फिर वो थोड़ा एहसान भी जता रही है, लेकिन कोई बात नहीं, आज सिर्फ आज आज मैं तुम्हारा काम कर दूंगी। धन्यवाद नन्ही गौरैया। तो देखिए राजकुमार कितना नम्र है, वह व्यक्ति जो इतना गौरवान्वित था, अपने ही सुख में दुख में लगा हुआ था, वो व्यक्ति अब कितना नम्र हो गया है कि वो गौरैया को उसका अनुरोध मानने पर धन्यवाद कर रहा है। गौरैया ने राजकुमार की तलवार की मूठ से लाल निकाला और उसे अपनी चोंच में दबाकर उड़ चली। उड़ते वक्त वह गिरजाघर के शिखर के पास से गुजरी, जहाँ श्वेत संगमरमर से देवदूतों की मूर्तियाँ बनी थी। वह उच्च प्रासाद के समीप से गुजरी तो उसने नाच की आवाज़ सुनी। छज्जे पर एक सुंदर किशोरी अपने प्रेमी के कंधे पर हाथ रखे हुए आई। आह, तारे कितने सुंदर हैं, प्रेम की शक्ति भी कितनी अद्भुत है, उसने भावोन्मेष में कहा। मैं समझती हूँ कि अगले नृत्य के लिए मेरे वस्त्र तैयार हो जाएंगे, मैंने उन पर फूल कढ़वाने की आज्ञा दी है, मगर ये लोग की देर कितनी लगाते हैं। जब गौरैया उस गरीब स्त्री की सहायता करने के लिए राजकुमार की मूर्ति की तलवार की जो मूठ है उससे उसने जब लाल निकाला और उसको लेकर जब वो उड़ चली, तो बीच रास्ते में उसे कुछ इस तरह के भवन मिले और उसने देखा कि कितना अंतर है लोगों के की जीवन शैली में। एक तरफ एक गरीब औरत है जिसके पास इतना भी धन नहीं है कि वो अपने बच्चे के लिए फल खरीद सके, और यहाँ पर इतनी विलासिता है कि जो ये स्त्री है जो एक बहुत ही ऊंचे भवन में बैठी है, जिसके कपड़ों पर फूल काढ़ने के लिए उसने उस गरीब स्त्री को अपने कपड़े दे रखे हैं, अब वो इस बारे में खुश होने की बजाय कि उसके कपड़े सुंदर बन रहे हैं, वो कहती है कि ये मगर ये लोग देर कितनी लगाते हैं, ये लोग अर्थात ये सुविधा वंचित लोग, जो धनाढ्य लोगों के लिए, जो धनी लोगों के लिए निरंतर काम करते हैं, बहुत बुरी स्थितियों में काम करते हैं, लेकिन उनकी इन स्थितियों के बारे में धनी लोग जो हैं उनको किसी भी तरह की कोई परवाह नहीं है, उन्हें बस निष्कर्ष कि हाँ हमारे कपड़ों पर फूल काढ़े गए हैं, बस उन्हें इस बात से ही मतलब है, उन्हें नहीं मालूम कि किस स्थिति में उस स्त्री ने अपने बच्चे की सेवा नहीं की, उसने उस बच्चे का इलाज नहीं कराया, उसे भरपेट भोजन नहीं दे पाई है वो, लेकिन वो अपना काम कर रही है, फिर भी उससे ये शिकायत ये धनी लोग कर रहे हैं कि मगर ये लोग देर कितनी लगाते हैं। अब गौरैया नदी पर से गुजरी और जहाज के शिखरों पर लटकते हुए आकाशदीप देखे। अंत में यानी इतनी दूर तक की यात्रा गौरैया ने की, अंत में वह उस टूटे फूटे मकान के समीप पहुंची। यानी वो जहाँ पर ये स्त्री रह रही है वो बहुत ही टूटा फूटा मकान है। बच्चा बुखार के कारण बिस्तर पर तड़प रहा था, वह फुदक कर भीतर पहुंची और उसने उस स्त्री के पास की मेज़ पर लाल रख दिया। माँ थक कर सो गई थी, वह बच्चे के सिरहाने उड़कर पंखों से हवा करने लगी, क्योंकि ये जो स्त्री है ये लगातार कढ़ाई का काम कर रही थी और इसका बच्चा भी बीमार है, तो पूरा दिन काम करके ये थक गई थी, तो ये थक कर सो गई है और बच्चा जो है वो बुखार में तड़प रहा है। तो इस बुखार में तड़पते हुए बच्चे को गोरैया ने जब देखा तो उसे लगा कि इसे थोड़ा आराम पहुंचाया जाए। तो वो सिरहाने उड़कर जो उसके पंखों से जो हवा हो रही थी उससे उस बच्चे को आराम देने का प्रयास करने लगी। आहा, कैसा अच्छा लग रहा है, बच्चे ने कहा, अब शायद मैं अच्छा हो रहा हूँ। यानी उसे बेहतर लगा, अच्छा लगा उसे, और वह सो गया। अब उसे थोड़ा सा बच्चे को आराम मिला और उससे उसे नींद आ गई। तो एक तरह से गौरैया ने ये एक काम राजकुमार का ये कर दिया है। गौरैया उड़कर राजकुमार के पास वापस आ गई और उसने उसे सब हाल बताकर कहा, आश्चर्य है, यद्यपि इतनी ठंडक है लेकिन मुझे ज़रा भी ठंड नहीं लग रही है। यानी ऐसा क्या है कि मौसम इतना ठंडा है और मुझे ठंड नहीं लग रही है? राजकुमार ने क्या कहा, इसलिए कि तुमने आज एक भलाई की है, तुमने एक अच्छा काम किया है। एक तरह से ये उसका धन्यवाद करने का, आभार व्यक्त करने का तरीका था। गौरैया सोचने लगी और सो गई। सोचने में उसे सदा झपकी आ जाती थी। जब दिन होगा तो वह नदी में गई और नहाई। अच्छा, आज रात को मैं मिस्र देश जाऊंगी, उसने सोचा। वह आज उमंग से भरी थी। उसने शहर की सभी इमारतें घूम डाली और वह गिरजाघर के शिखर पर बहुत देर तक बैठी रही। जब चांद उगा तो वह राजकुमार के पास गई और बोली, तुम्हें मिस्र में किसी से कुछ कहलाना तो नहीं है? मैं अभी अभी जाने के लिए तैयार हूँ। तो उस गौरैया ने जब रात हुई तो राजकुमार के पास जाकर उसने कहा कि जैसे हम कहीं पर जाते हैं और हम अपने घर में अपने मित्रों से ये पूछ लेते हैं कि मैं वहाँ जाने जा रहा हूँ, तुम्हें किसी से कुछ संदेश तो नहीं देना है? हालांकि आज का जो समय है बहुत ही उन्नत समय है, प्रगति का समय है, तो हमें इस तरह से संदेश भिजवाने की आवश्यकता नहीं होती है। यद्यपि लेकिन ये जिस समय ये कहानी लिखी गई थी उस समय इस तरह से संदेश जाते होंगे, तो उसी तरह से गौरैया ने भी राजकुमार से कहा है। अब राजकुमार कह रहा है कि गौरैया गौरैया नन्ही गौरैया, क्या तुम आज रात को और नहीं ठहर सकती? मूर्ति ने कहा, शहर में दूर एक सीली हुई कोठरी में मुझे एक तरुण कलाकार दिख रहा है। वह अपने कागजों से लदी मेज पर झुका है और उसके बगल में एक पात्र में सूखे हुए फूल रखे हैं। उसके बाल भूरे और सुनहले हैं, उसके होंठ अनार की फूल की तरह लाल हैं, उसकी आंखें बड़ी सपनीली हैं। वह रंगमंच के लिए नया नाटक लिख रहा है, मगर ठंड के कारण उसकी उंगलियां नहीं चल रही हैं। अंगीठी में एक भी कोयला नहीं है और भूख से उसकी आंखों के सपने टूट रहे हैं। तो यहाँ राजकुमार की जो प्रतिमा है उसने एक और दुखी व्यक्ति को देखा है, और ये दुखी व्यक्ति जो है एक कलाकार है, और इसके पास ये खूबसूरत कलाकार है, इसकी आंखों में बहुत से सपने भरे हुए हैं और ये एक नाटक लिख रहा है, लेकिन इतनी ठंड है कि उसकी उंगलियां नहीं चल पा रही हैं, और अपने शरीर को गर्म करने के लिए, उसे उष्णता देने के लिए उसकी अंगीठी में एक भी कोयला नहीं है। यानी ये बहुत गरीब है, और चूंकि ये गरीब है तो भूखा भी है, और भूख जो है वो बहुत सारे सपनों को नष्ट कर देती है, क्योंकि पहली आवश्यकता होती है कि हम पेट भरें। तो ये व्यक्ति चूंकि भूखा है इसलिए रंगमंच के लिए नाटक लिखने और इस तरह इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए इसके पास हिम्मत नहीं है, क्योंकि ये अपनी न्यूनतम आवश्यकताएं भी पूरी नहीं कर पा रहा है। अब यहाँ पर गौरैया ने ये बात सुनी और उसको फिर से लगा कि मैं बता दूं कि भाई मेरी योजना कुछ और है, मैं इस तरह से मदद करने के लिए नहीं हूँ। तो गौरैया कहती है, मिस्र में सब मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। कल मेरे सब साथी दूसरे प्रपात तक उड़ जाएंगे, जहां नरकुल की झाड़ियों में दरियाई घोड़े सोते हैं और संग मूसा की शिला पर मेमनान का देवता बैठा है। रात भर वह तारों की ओर देखता है। भोर का तारा जब डूबने लगता है तो वह खुशी से चीख पड़ता है और फिर चुप हो जाता है। दोपहर के समय वहाँ शेर आते हैं, जिनकी आंखें हरे रत्नों की तरह चमकती हैं और जिनकी गरज में प्रपात का स्वर डूब जाता है। यानी इतना खूबसूरत शहर है, मैं उस शहर में जाना चाहती हूँ और मेरे जो साथी हैं वो बहुत आगे तक पहुँच जाएंगे, मैं बहुत पीछे रह जाऊँगी, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती हूँ। लेकिन केवल आज रात के लिए भी तुम न रुकोगी, राजकुमार फिर से आग्रह कर रहा है और कह रहा है कि अच्छा आज मैं और रुक जाऊंगी, क्या दूसरा लाल उसे दे आऊं? अफसोस, मेरे पास अब कोई दूसरा लाल नहीं है, मेरे पास मेरी आंखें हैं जो नीलम से बनी हैं, जो हजारों वर्ष पहले भारत से लाए गए थे। एक निकाल कर उसे दे आओ, वह उसे बेचकर ईंधन और खाना खरीद लेगा। यानी मेरी आंख में जो नीलम लगे हैं उनमें से एक नीलम निकाल कर तुम उस तरुण कलाकार को दे आओ। अब गौरैया को बहुत दुख हो रहा है कि राजकुमार अपनी आंख तक देने के लिए तैयार है। प्यारे राजकुमार, यह तो मुझसे नहीं होगा, और वह फूट फूट कर रोने लगी। राजकुमार ने कहा कि नहीं गौरैया, प्यारी गौरैया, तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। यानी मैं कह रहा हूं ना, तुम मेरी आंख से ये नीलम निकाल लो, मैं चाहता हूँ उस तरुण कलाकार का पेट भर जाए, वो अपना कुछ काम कर सके, उसके जीवन में भी कुछ खुशी आए, तो मैं उसे इस अगर मेरी आंख से ये नीलम निकाल कर वो थोड़े समय के लिए ही सही सुखी हो सकता है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरी इसमें मदद करो। गौरैया ने उसकी आंख का नीलम निकाल लिया और कोठरी की ओर उड़ चली। और कलाकार सिर झुकाए बैठा था, अतः उसने पंखों की आवाज़ सुनी ही नहीं। जब उसने सिर उठाया तो उसने देखा कि मुरझाए हुए फूलों पर बड़ा सा नीलम रखा है। ओह, मालूम होता है मेरा मोल लोग आंक रहे हैं, ये शायद किसी बड़े भारी प्रशंसक ने भेजा है, अब मैं अपना नाटक समाप्त कर लूंगा। उसे नहीं मालूम है कि ये नीलम जो आया है यहाँ पर, ये कौन लेकर आया है। उसे लगता है कि उसके काम से, उसके लेखन से प्रसन्न होकर किसी प्रशंसक ने उसको ये नीलम भेंट किया है। अब गौरैया जो है वो फिर से जाने के लिए तैयार है, तो राजकुमार के पास वो फिर से जाती है, कहती है कि मैं तुमसे विदा मांगने आई हूँ। अब राजकुमार उसे फिर से रुक रहा है, कह रहा है कि आज रात को और रुक जाओ। अब गौरैया को इसमें दिक्कत है, वो जाना चाहती है, कहती है देखो अब जाड़ा पड़ने लगा है और मिस्र में हरे भरे खजूर के कुंजों पर गर्म धूप छाई होगी, मेरे साथी एक पुराने मंदिर में घोंसला बना रहे होंगे। प्यारे राजकुमार, मैं जा रही हूँ, मगर मैं तुम्हें भूल नहीं सकती, अगले वसंत में जब मैं लौटूंगी तो तुम्हारे लिए एक लाल और एक नीलम लेती आऊंगी। यानी अब ऐसे ये गौरैया जो कहानी के आरंभ में बिल्कुल स्वार्थी थी, जो बस अपने बारे में सोच रही थी, धीरे धीरे उसमें भी वो समानुभूति विकसित हो रही है। और पहले वो जब राजकुमार उसे कहता है कि मेरी आंख का नीलम निकाल कर दे दो, तो उसे रोना आ जाता है। यानी अब वो राजकुमार के दुख को सोच पा रही है, उसका अंदाज़ा लगा पा रही है, तो वो भी दुखी है। और यहाँ पर वो कहती है कि देखो तुम्हारी तलवार की मूठ से लाल भी चला गया है, आंख से नीलम भी चला गया है, तो जब मैं आऊँगी ना वसंत में, तो मैं तुम्हारे लिए ये नीलम और लाल लेती आऊँगी। लेकिन यहाँ राजकुमार अपनी ही योजना में, अपनी ही बात पर लगा हुआ है, वो तीसरी स्थिति बता रहा है। तीसरी स्थिति में क्या है कि नीचे गली में एक लड़की खड़ी है, उसका सौदा यानी उसका सामान, जो भी सामान उसने लिया था, नाली में गिर गया है और वह रो रही है। यदि वह खाली हाथ घर गई तो उसका पिता उसे मारेगा। उसके पैरों में जूता नहीं है, उसका सिर नंगा है, मेरी दूसरी आंख निकाल कर उसे दे दो, तो वह मार से बच जाएगी। अब ये प्रतिमा इतनी ऊंची है, उसे सब नजर आ रहा है। उसे मालूम है कि यहाँ पर एक लड़की है जिसका सामान गिर गया है, और अगर वो सामान लेकर नहीं गई तो उसके पिता उसे पीटेंगे। तो कहता है कि गौरैया से कि तुम मेरा जो दूसरी आँख में जो लगा हुआ नीलम है उसे तुम दे दो। कहो तो मैं आज रात भर और रुक जाऊँ, मगर मैं तुम्हारी आँख नहीं निकालूंगी। कि अगर तुम्हें मेरे रुकने से थोड़ा अच्छा लगता है तो मैं रुक जाती हूँ, और फिर तो तुम बिल्कुल ही अंधे हो जाओगे। तो इस तरह से शिक्षार्थियों, ये हमारी कहानी आगे बढ़ती है। यहाँ तक हमने चर्चा की, मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक ये कहानी बहुत अच्छे से समझ में भी आई होगी। धन्यवाद।